हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 31, 32, 33 और 34। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तताय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वस्मने यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविध सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरात हूण द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया येनीश पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्विताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समेरिषीणां ऋषभ प्रसीदत भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभु निर्मायशेति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके
భక్తిరభవతి నైష్టికి. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాచార శ్రీవాసది గౌర భక్తవింద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణ్ కి జయ. దూసరే స్కంద అధ్యాయ 5, జిస్కా శీర్షక్ హై సమస్త కారణో కి కారణ. బ్రహ్మాజీ నారద ముని కో సృష్టి కి ఉత్పత్తి కే విషయ మే బతాతే హుయే ఆజ్ శ్లోక్ నంబర్ 31 మే కహతే హై.
తేజసాత్తు వికుణ్వాత్ ఇంద్రియాణి దశాం భవన్ జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి బుద్ధి ప్రాణశ్చ తేజసౌ శ్రోత్రం త్వగ్రాణం దృగ్జిహ్వా వాగ్మేంద్రాంగ్రిపాయమః. తేజసాత్తు వికుణ్వాణాత్ ఇంద్రియాణి దశాం భవన్ జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి బుద్ధి ప్రాణశ్చ తేజసౌ శ్రోత్రం త్వగ్రాణ దృగ్జిహ్వా వాగ్దర్మేంద్రాంగ్రిపాయవః.
తేజసాత్తు వికుణ్వాయ, తేజసాత్ మతలబ్ రజోగుణ, రజోగుణి అహంకార్. జబ్ జీవ్ కే అందర్ రజోగుణ జో హై వో వికుణ్యాత్ రూపాంతరిత్ హో జాతా హై తో క్యా హోతా హై. ఇంద్రియాణి దశాం భవ, ఇంద్రియాణి యాని ఇంద్రియా, దశాం యాని దశ, అభవ యాని కే వో ఉత్పన్న హోతీ హై, ఉత్పన్న కీ గయీ హై. కౌన్ కౌన్ సీ? జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి. జ్ఞానశక్తి మతలబ్ జ్ఞాన ప్రాప్త కర్నే కి 5 ఇంద్రియా యాని జ్ఞానేంద్రియా, ఆంఖ నాక్ త్వచా రసనా. క్రియాశక్తి అర్థాత్ కార్య 5 ఇంద్రియా కర్మేంద్రియా, హాత్ పేర్ జిహ్వా ఉత్సర్జన్ తథా విసర్జన్ కి జనేంద్రియ ఇస్కే విషయ బతాయ కి 5 జ్ఞానేంద్రియా ఔర్ 5 కర్మేంద్రియా. బుద్ధి ప్రాణ, బుద్ధి మతలబ్ బుద్ధి, ప్రాణ మతలబ్ జీవన్ శక్తి, తేజసో యాని రజోగుణ కే సారే పదార్థ, ఔర్ శ్రోత్రం త్వగ్ గ్రహణం దృక్ జిహ్వా. శ్రోత్రం మతలబ్ సున్నే కి ఇంద్రియ, త్వగ్ మతలబ్ స్పర్శ కర్నే కి, గ్రహణ అర్థాత్ సూంఘనే కి, ఔర్ దృక్ అర్థాత్ దేఖనే కి ఇంద్రియ, జిహ్వా అర్థాత్ స్వాద్ లేనే కి ఇంద్రియ, వాక్ మతలబ్ బోల్నే కి ఇంద్రియ, దో యాని గ్రహణ కర్నే కి ఇంద్రియ, మేద్ర అర్థాత్ జనన ఇంద్రియ, ఔర్ అంగ్రియ పాం, పాయవః అర్థాత్ మల్ విసర్జన్ కర్నే కి ఇంద్రియ. యే సారీ ఇంద్రియా రజోగుణ కే కారణ్ ఉత్పన్న హోతీ హై ఔర్ ఉస్కే విషయ మే యహాన్ పర్ బ్రహ్మా జీ నారద్ ముని కో బతా రహే హువే కహతే హై. రజోగుణ మే ఔర్ అధిక వికార్ ఆనే సే బుద్ధి తథా ప్రాణ కే సాథ్ హీ కాన్, త్వచా, నాక్, ఆంఖ్, జీవ్, మూ, హాత్, జనేంద్రియ పాం తథా మల్ విసర్జన్ కర్నే కి ఇంద్రియా సభీ ఉత్పన్న హోతీ హై. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ. శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ కహతే హై భౌతిక జగత్ మే జీవన్ న్యూనాధిక రూప్ మే మనుష్య కి బుద్ధి తథా ప్రాణ శక్తి పర్ నిర్భర్ కర్తా హై. కఠిన్ జీవన్ సంఘర్ష్ కా సామ్నా కర్నే కే లియే జ్ఞానేంద్రియ బుద్ధి కి సహాయతా కర్తీ హై ఔర్ ప్రాణ శక్తి కి ధారణా హాత్ తథా పాంవ్ జైసీ సక్రియ ఇంద్రియో కే సంచాలన్ సే హోతీ హై. అతి కుల్ మిలాకర్ యహ జీవన్ సంఘర్ష్
रजोगुण का कार्यान्वयन होता है, अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण अर्थात रजोगुण के विविध उत्पादन तथा अपोत्पाद हैं, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो बुद्धि की सहायता करती हैं, और जो प्राण शक्ति है वो हमारी कर्म इंद्रियों की सहायता करती है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी इंद्रियां सक्रिय इंद्रियों के संचालन होते हैं, अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। जब तक रजोगुण नहीं होगा तब तक जीव का कोई भी इंद्रिय जो है वो कार्यान मतलब वो क्रिया नहीं करेगा, अतः बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद या उत्पादन है। जो कुछ भी है वो रजोगुण के कारण ही सक्रिय है। और रजोगुण कहाँ से आता है, पहले ही बताया जा चुका है कि रजोगुण वायु तत्व से, जो पंच महाभूत है ना उसमें वायु तत्व से रजोगुण उत्पन्न होता है। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये सारी इंद्रियां भगवान से हैं, क्योंकि भगवान ने ही ये पंच तत्व अपने अंदर से निकाले हैं। और इसी बात को आगे बता रहे हैं, यदैते संकटा भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायत न निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तमा। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तमा। यद ऐते संगता भावा, यद मतलब जब तक, एते यानी ये सब, असंगता एकत्रित हुए बिना, भावा इस तरह से होकर, जब तक ये सारी जो इंद्रियां हुई हैं उनको जब तक एकत्रित नहीं किया जाता, भूतेन्द्रिय मनोगुणा, भूत यानी तत्व, इंद्रिय यानी इंद्रियां, मनो यानी मन, गुणान यानी प्रकृति के गुण, जब तक ये सब चीजें एकत्रित नहीं होती हैं, यदा यतन निर्माणे, यदा मतलब जब तक आयतन यानी शरीर निर्माणे यानी निर्मित होता है, न यानी नहीं, न शेकुर ब्रह्म वित्तमा, शेकुर मतलब संभव नहीं होता है, ब्रह्म वित्तमा अर्थात हे दिव्य ज्ञान के दाता नारद। नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं, हे आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते हैं तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। यानी कि अलग अलग सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तो तैयार हो गए, लेकिन अब इन सबको जोड़ने के लिए एक चीज चाहिए, उनको एक शरीर बनाकर उसके अंदर आत्मा डालेंगे तभी तो ये सक्रिय होगा, वरना अलग अलग से ये इंद्रियां बिखरी पड़ी हुई होंगी तो उनसे तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर उस आत्मा को महत्व नहीं दिया जाता, इंद्रियों की इच्छाओं को तो है ना इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो वास्तव में आत्मा है उसके विषय में, उसके कल्याण के विषय में इतना कुछ है ना भौतिक जगत में नहीं होता। अब देखो हम संसार में देखते हैं, मतलब जब तक ये अलग अलग है तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता, इसलिए इनको जोड़ना होगा। और ये किस तरह से है, श्री प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताएंगे। जैसे कोई मोटर कार होती है, उसके जितने भी पुर्जे हैं वो अलग अलग हैं, तो फिर ना वो कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन तभी वो कार्य कर सकते हैं जब इन सबको मिलाकर एक कार बनाई जाती है। तो उसी तरह से अब तक तो सिर्फ है ना इंद्रियां ही उत्पन्न हुई है, मन इंद्रियां गुण और ये पंचभूत वगैरह, लेकिन इन सबको जोड़ना पड़ेगा। यदैत संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, इन सबको एकत्रित करना पड़ेगा। यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तमा, तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीते समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवों की विविध प्रकार के शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ये अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे। यंत्रारूढानि मतलब एक मोटर में बैठकर जिस तरह से ड्राइवर चलाता है उसी तरह से भगवान इस जीव को। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्गदर्शन में रहकर चलती हैं, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाते, जो इंद्रियां, मन तथा गुणों के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक सफुलिंग है, परम पुरुष का अंश है और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है और प्रकृति के गुणों पर प्रभुत्ता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी प्रकार भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीव को भगवान की प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुत्ता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर संसार उत्पन्न, ये जो भौतिक सृष्टि है उत्पन्न, उसको उत्पन्न करने का एक कारण बता रहे हैं। मूल कारण क्या है कि जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है और वो इच्छा करता है कि मुझे प्रभुत्ता जतानी है, मुझे भौतिक जगत के ऐसे आनंद प्राप्त करना है, मुझे स्वामी बनना है, मुझे भोक्ता बनना है। भगवान जानता है कि यदि जीव भौतिक जगत में जाएगा तो ये भौतिक जगत तो दुखालयम है, कष्टों से भरा हुआ है। भगवान की इच्छा नहीं है ये कि भगवान जीव जो है वो भौतिक जगत में आकर कष्ट भोगे। जीव अपनी इच्छा, क्योंकि भगवान ने उसे स्वेच्छा से कार्य करने के लिए उसको भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तो जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान के अंडर में रहकर कार्य करना नहीं चाहता, भगवान की सेवा करना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि मैं भौतिक जगत में प्रभुत्ता जताऊं। तो भगवान इस जीव की इस इच्छा को देखकर, जिस तरह से माता पिता चाहते नहीं है कि बालक कोई है ना गलत कार्य करे या फिर है ना किधर जाए रात को दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाए या फिर, लेकिन माता पिता को पता है कि इस तरह से तो उसके लिए हानिकारक होएगा, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, नहीं मम्मी मुझे जाना है। तो इस तरह से जब बहुत ज्यादा जिद करता है तो माता पिता कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा है तुम जाओ। तो उसी तरह से भगवान ने भी जीव की इस इच्छा को देखकर भौतिक जगत पर प्रभुत्ता जताने के लिए, यहाँ श्री प्रभुपाद जी इस बात को बहुत ही सरलता से बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव आध्यात्मिक सफुलिंग है, हम सब आध्यात्मिक है, इस भौतिक जगत के नहीं है, परम पुरुष का अंश है और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है और वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुत्ता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे।
जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौना थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीव को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुत्ता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है और सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं। सब हम जो इस भौतिक जगत में आए हैं ना, ये खेल है और भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आप किस तरह से इस खेल को खेल रहे हो। तो जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है, यहाँ पर जो बताया गया है कि भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में, तो ये भौतिक प्रकृति जो है वो उसकी निगरानी कर रही है, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसको रिएक्शन भी तो देना है ना, तो उसी के अनुसार जो है ना, ये भगवान की दासी है और उनके नियंत्रण में, उसकी निगरानी में हम सब कार्य कर रहे हैं। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग यानी दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये माया वैसे तो भगवान की दासी है, लेकिन जो यहाँ के जीव होते हैं वो कम बुद्धि के कारण वही मानते हैं कि ये दुर्गा आदि जो है वही परम सत्य है, वो परम सत्य को स्त्रीलिंग मानते हैं। मूर्ख बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर उठ नहीं पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने स्वामी के अधीन रहती है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मूर्ख होते हैं वो समझते हैं भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह मानते नहीं है, भगवान को नहीं मानते, वो केवल सब यही सोचते हैं निसर्ग से सब आता है, नेचर है, भाई चांस सब कुछ हो रहा है, प्रकृति ही कर रही है। लेकिन जो सयाने पुत्र हैं, जो बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि प्रकृति के जो सारे कार्यकलाप हैं वो भगवान द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, भगवान पूरी प्रकृति पर कंट्रोल करते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता 9.10 में, माया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचर हेतु नाने व कौन्तेय जगत विपरीत। ये पूरी भौतिक सृष्टि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित है और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी जाएगी। अब महत्त्व के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये भौतिक प्रकृति में गुण उत्पन्न हुए, गुणों सत्वगुण से ना अहंकार उत्पन्न हुआ और रजोगुण से ये सारी इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार ये सब उत्पन्न हुए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसी बात को बता रहे हैं कि शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत्त्व से निर्मित हुई और फिर क्या होगा, ये इंद्रियां, ये अंग, ये गुण सब हो गए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इनको एकत्रित करना है, यदय ते संगता भावा, इनको एकत्रित करना है। तो फिर वो कौन करता है, भगवान की इच्छा से एक साथ ये सारे अंग जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। और इसको आगे यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं श्लोक नंबर 33 में, वे कहते हैं
तदा संहत्य चान्योनम भगवत शक्ति चोदिता सदसत्वम् उपादाय चोभयम् सस्रजुह्यदा तदा संहत्य चान्योन्यम् भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्वम् उपादाय चोभयम् सस्रजुह्यदा। तदा संहत्य चान्योऽयम् भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वम् उपादाय जो भयं सस्रिजुर्हयद।
तदा यानी वे सब, ये जितने भी इंद्रियां जो कुछ हैं वो सब संहत्य समवेत होकर च भी अन्योयम एक दूसरे को, ये सब एकत्रित कैसे होती हैं सम भगवत शक्ति चोदता, भगवत यानी भगवान द्वारा शक्ति यानी शक्ति चोदता यानी प्रयुक्त होकर, जब उनको भगवान की शक्ति प्राप्त होती है फिर सदसत्त्वम उपादाय, सत यानी सद असत्त्वम यानी मूल तथा गौण, यानी कि मूल और गौण सृष्टि जो भी है वो उपादाय स्वीकार करके च भी उभयम यानी दोनों सुसृजु उत्पन्न हुआ ही निश्चित अध ये ब्रह्मांड, फिर ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और उसमें मूल और गौण सृष्टियां जो भी भगवान को करनी होती है वो अपनी इच्छा से करता है। वो सब किस तरह से होता है उसको श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाएंगे। अनुवाद देखिए, इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्रित हो गए तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, फिर ब्रह्मांड बनता है। एक सारी वस्तुएं तैयार हो गई, अब ब्रह्मांड तैयार होता है और फिर क्या होता है, इस श्लोक यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सृजन के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। भगवत शक्ति चोदिता, ये सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, सृष्टि विष्णु भी नहीं करते हैं, बल्कि भगवान जो है वो इस सृष्टि को अपनी शक्तियों से उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं, वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो साक्षात भगवान ही भौतिक सृष्टि नहीं बन जाते हैं, उनका तो एक अलग स्वरूप है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों द्वारा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्तत्व कहलाता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका एक कोना लेते हैं और उसमें आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है, फिर क्या होता है, आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्तत्व कहलाता है। पहले तो आध्यात्मिक जगत ही है बस, फिर एक बादल का टुकड़ा उस आध्यात्मिक जगत को आच्छादित कर देता है जिसको महत्तत्व कहते हैं। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्तत्व के जल में शयन करते हैं, फिर भगवान कृष्ण महाविष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और पहला उनका एक्सपेंशन क्या होता है, महाविष्णु अंश द्वारा इस महातत्व के जल में शयन करते हैं, पूरे जल में महाविष्णु जो है वो शयन करते हैं और इस जल को कारण अर्थात कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते हैं तब उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। अब ये कारण जल भी, इसको कारण भी कहते हैं, कारण दक्षाय विष्णु भी बोलते हैं और महाविष्णु भी बोलते हैं, और जैसे ही वो शयन करते हैं उस कारण व जल में तो वो उनकी श्वासों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, ये जो कारण और समुद्र है जो जिस पर ये महाविष्णु है ना लेटे हैं, वहीं पर ये सारे ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड जो है उनकी आयु कितनी होती है, जब महाविष्णु सांस पुनः अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड चले जाते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदशाय विष्णु के स्वरूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलती है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि पहली सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड को बनाना। वो कहाँ से बनती है? पहली सृष्टि है महाविष्णु, वो भगवान की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। फिर महाविष्णु की सांसों से ब्रह्मांड बनते हैं, और ब्रह्मांड इतने सारे जब बनते हैं तो महाविष्णु का ही एक स्वरूप जो है वो गर्भोदशायी विष्णु का स्वरूप धारण करके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है और शेषनाग के ऊपर लेटता है। उनकी नाभि से कमल नाल निकलती है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर क्या करते हैं? अब जो नेक्स्ट हो रहा है, तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। फिर जीव की इच्छा को देखा जाता है। जीव की जैसी इच्छा होती है उसी अनुसार, जैसे मृत्यु जब होती है जीव की, उस समय भी भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैतिकोन्ते सदा तद्भाव भावेता। मृत्यु के समय जीव की जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है। और इच्छा कैसी होती है? सारा जीवन जीव जो कार्य करता है, जो इच्छा करता है, वही इच्छाएं, वही कार्य जो है वो स्मरण में आते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि अंतमति सो गति, अंत में जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपको गति प्राप्त होगी। जैसे यदि हम चाहते हैं कि अंत में हमारी इच्छा भगवत प्राप्ति की बने, अंत में हम भगवान को प्राप्त करें और जन्म मरण के चक्कर से छूटें, तो पूरा जीवन हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। और वे ही प्रकृति को, सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तिता। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन होता है और विनष्ट होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भौतिक सृष्टि दो प्रकार की होती है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि, इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है। पहले तो महाविष्णु बहुत सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए गर्भोदशा विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक खास बात बता रहे हैं कि दोनों का सृजन भगवान के द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। वास्तविक जो सृष्टा है वो भगवान है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही ये पूरा जो क्रम से हो रहा होता है, इसलिए समस्त कारणों के कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। आगे ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, वर्ष पूर्व सहस्त्रांते दंडम उदकीशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत। वर्ष पूग सहस्रांते तदंडम उदकीशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत। वर्ष पूग सहस्रांते, सहस्रांति मतलब हजार वर्षों के, वर्ष पूग अनेक वर्ष, यानी सहस्रांति हजारों वर्ष के अंत के, हजारों वर्ष गुजरने के बाद क्या होता है,
तदंडम उदकश तद वह अंडम यानी ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड कारण लक्षण विष्णु के श्वासों से निकल रहे होते हैं वो ब्रह्मांड तदंडम उदकेशयम उस कारण जल में शयन यानी डूबकर वो उस वहीं पर डूब रहे होते हैं। उसके अंदर कोई सृष्टि नहीं होती है, हजारों वर्षों तक तो यूं ही जो है वो इसमें ही जल में रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, काल कर्म स्वभावस्तु, काल मतलब नित्य समय, काल क्रम एक समय आता है पर्टिकुलर समय, स्वभावस्था प्रकृति के गुणों के अनुसार जीवो जीवम अजीवयत, जीवो मतलब जीवों के स्वामी जो भगवान है, जीवम यानी अचर, अजीवयत यानी जीवित किया। वैसे तो ये अचर हैं, अजीव हैं, लेकिन उनको भगवान जो है वो अपनी शक्ति से पुनः उस उन्हें सजीव बनाते हैं। अनुवाद देखिए, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर यानी कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक के में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह से सजीव बनाया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है, जीवो जीवम अजीवयत, तो क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं, वेदों में उन्हें नित्य अन्य सभी नित्यों के नायक कहे गए हैं। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्र के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता ना तो पुत्र होता है न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही होता है जैसा पिता के साथ पुत्र का होता है। गुणात्मक क्वालिटीज तो पिता की और पुत्र की सेम होती है, किंतु बाप जो होता है वो बाप होता है और पुत्र जो होता है पुत्र होता है। पुत्र कभी अपने पिता का पैदा करने वाला नहीं बन सकता। उसी तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाय विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। फिर प्रकृति के गर्भ से जो है वो सारे जितने भी जीव हैं उनको सजीव बनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है। मम योनिर्महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं ही इसे ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान ये ऐलान करते हैं कि समस्त जीवों का जन्म देने वाला जो स्रोत है, बीज जो है वो मुझसे प्रदत्त होता है, अहम बीज प्रदपिता। उसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के बाद वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नानाविध प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतः भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप हैं। जैसा कि यहाँ श्लोक में बताया गया, काल कर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम अजीवयत, तो वैसे तो जीव जो है वो अनादि काल से हैं। ऐसा नहीं है कि जीव अब उत्पन्न होते हैं या समय के बाद दूसरे जीव इंक्रीज होते हैं, ऐसा नहीं है। जितनी भी जीव आत्मा संसार में दिख रही हैं वो सारी स्टार्ट से हैं और जिस जिस तरह से वो इच्छाएं करते हैं और इच्छाएं करते हुए एक समय ऐसा आता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है
और मृत्यु के समय जो इच्छा प्रबल होती है वैसा ही टाइप का उनको पुनः दूसरा शरीर मिलता है, जो चाहे वो शरीर पशु का हो पक्षी का हो। तो इस तरह से जीव पुनः सजीव हो जाता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। ऐसे करते 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 जब जीव को मनुष्य का देह प्राप्त होता है तब उसे ये अवसर मिलता है कि वो इस जन्म मरण की श्रृंखला को खत्म करके अपने वास्तविक धाम भगवत धाम को प्राप्त कर सके। तो यहां पर तो ये जीवों के पुनः उत्पन्न और उनके विषय में बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक सिद्धि क्या है? वास्तविक सिद्धि यह है कि जीव को दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े। और उसका केवल एक ही तरीका है कि जीव जो है वो भगवान के धाम में चला जाए। और भगवान के धाम में जाने का भी एक ही तरीका है। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त एवं आत्मान मत परायण। कि यदि आप मन से निरंतर मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो मैं आपको यह वचन देता हूं कि आप मेरे धाम में आओगे। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मावा, और जो जगह जहां से वापस आना नहीं पड़ता है वो मेरा धाम है। इसलिए मनुष्य को सदैव इसी के कार्य के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह भगवान को, भगवान ने जो हमें दिया है वो क्यों दिया है? दिव्य जगत को प्राप्त करने के लिए दिया है। यस्यैव हेतु प्रियतेव को विदु न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यदा। ये बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि यूं ऊपर नीचे और अलग अलग योनियों में भटकने से जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है, जो न ऊपर के लोकों में प्राप्त होती है न नीचे के लोकों में प्राप्त होती है, उसी वस्तु यानी भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। बाकी जो जिस तरह से संसार में दुख जो है वो बगैर प्रयास के हमारे पास आई जाते हैं, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता लेकिन फिर भी जीवों को दुख मिलता है, उसी तरह जो हमारे हिस्से के सुख हैं वो भी बगैर प्रयास के ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रयास यदि करना है तो उस जगह को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए जो कि हमारे प्रयास करने के बगैर हमें प्राप्त नहीं होगा। भक्ति किसी के भाग्य की मोहताज नहीं है, भक्ति किसी के कर्मों के अनुसार उसे नहीं मिलती। कर्मों के अनुसार आपको सरकमस्टेंसेस मिल सकते हैं, ऐसा वातावरण प्राप्त हो सकता है, ऐसा परिवार प्राप्त हो सकता है जिसमें आप सरलता के साथ भक्ति करो, लेकिन भक्ति करना है या नहीं करना है इसका निर्णय आपको लेना है। नाम जप करना है या नहीं करना है इसका निश्चय आपको करना है। तो अगर हमें वास्तव में इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि अपने इस जन्म को हम व्यर्थ के कामों में नहीं बिताएंगे बल्कि भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, ताकि हम इस जन्म मरण की श्रृंखला को पार करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।